Пина.
Да. Но то, что я говорю, не от того, что я пина. Мы можем не жить с мечтами и сожалениями, если захотим. На самом деле, мы должны убить всех наших врагов и бросить в мощь. Ни одного из них не должны оставить в живых. Нина Крушенко провалилась сквозь землю, пока не удалось узнать, кто этот иранец. Человек, который давал нам информацию, молчит. И ты хочешь, чтобы я не пила?
Нина Крушенко, где бы ни пряталась, все равно когда-нибудь позвонит тому человеку, с кем она была близка в офисе.
Для нее самый близкий человек был Муфа.
Тогда надо выяснить, кто был самым близким человеком Муфа.
Авраам.
इस हालात टारगेट किलिंग नेटवर्क का जिम्मेदार और चीफ आदम वफाज असिस्टेंट और ऑपरेशनल कमांडर योहान एलमूत दहशत गर्दाना उमर का माहिर और मुसाद का राबितेकार इन तीनों की गुफ्तगू नासिर के जरिए ने अपने खुफिया माइक्रोफोन के जरिए जो उसके पास होता है रिकॉर्ड की है। उनकी बातें और बहसें ईरान इसराइल तसादुम के बारे में है। योहान एलमूत ने बहुत अहम बातें की हैं। इस एतबार से नहीं कि नई बातें हैं, नहीं बल्कि इस एतबार से कि उनके बारे में किसी तजिए की जरूरत नहीं है, बल्कि बराह रास्त खुफिया अहलकार से सुनी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह किसी और ने बातें नकल नहीं की हैं।
जहांगीर, तुम उससे अपना फासला कम करो, जल्दी करो,
जल्दी करो, उसके पास पहुंचो।
उसके पास पहुंचो। वो फायरिंग कर रहा है,
तुम क्या कर रहे हो?
फौरन फायर करो, फौरन फायर करो। अमीर ने भेज दिया।
इसका नाम क्या है?
फरशाद संजरी।
इसका नाम तो 5 इलाकों में रहने वालों जैसा है ना?
गौर से सुनो, 1980 की पैदाइश है करज में, तालीम हाई स्कूल, इस्तांबुल सफ़र से पहले तक करज में सर्द आपकी एक बुटीक में काम करता था, बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाता था जो करज में ही थी। एक साल पहले जिम के अंदर ही एक औरत के सिलसिले में जिसका नाम महीन रोहनी था, उसका अपने दोस्त हसन दादवर से झगड़ा होता है। इस झगड़े में हसन दादवर के सर पर चोट लगती है और वो कोमा में चला जाता है। फरशाद संजरी अस्पताल से फरार हो जाता है और बाद में ज़मीनी रास्ते से चला जाता है इस्तांबुल।
ये तो ना पास इलाके का है और ना गरीब इलाके का, ये तो बीच शहर में रहने वाला है।
बिलावजह भाग गया।
जिसका उससे झगड़ा हुआ वो मर गया?
नहीं, हसन दादवर जिंदा है मगर मफलूज हो चुका है और अपनी माँ के साथ रहता है।
ये जो लड़की महीन रोगनी जिसकी वजह से दोनों का झगड़ा हुआ, इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था।
उसका भी अंजाम अच्छा नहीं हुआ। चंद दिन पहले कुछ लोग उसके घर में घुसे और चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया। उसके कातिल का अब तक सुराग नहीं लगा।
महीन रोगनी का फोटो अमीर ने भेजा?
हाँ।
कितने साल की?
मेरे ख्याल में तो 40 साल की होनी चाहिए।
कुछ शक्ल सूरत के बारे में बता।
मेरे ख्याल में तो आम शक्ल की है। क्यों, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो?
कुछ नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, यूं ही बस। मैंने इसलिए पूछा कि छोड़ो, बस यूं ही पूछा।
ठीक है, तुम ड्राइविंग करो।
गोली उसके कंधे से निकाली जा चुकी है। एक घंटा पहले होश में आया है। उसकी जिस्मानी हालत ठीक ही है। डॉक्टर ने बातचीत की इजाज़त दी है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है।
ठीक है।
डॉक्टर मुसबी, इमरजेंसी वार्ड।
तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ।
डॉक्टर मुसबी, इमरजेंसी
शायद तुम्हें मालूम नहीं है, उसको कत्ल कर दिया गया। उसके घर में घुस के चाकू से 10 वार किए। उसको पहचानते हो? उसका नाम महीन था।
महीन?
महीन रोगनी, याद आया?
चली गई महीन। अतकरदार औरत का अंजाम यही होता है, कोई आता है चाकू के 10 वार करके हलाक कर देता है। मर गई तो मर गई।
उसकी वजह से अपने दोस्त को पाहिश करके तुम्हें क्या मिलेगा?
उसने झूठ बोला। हसन उसके घर गया ही नहीं था। हसन को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी।
तुमको कैसे मालूम?
जब वो होश में आई थी उसने अपनी खाला को बताया था।
ये बात उसकी खाला ने इस्तांबुल में आकर तुम्हें बताई थी?
नहीं, उसने तेहरान इस्तांबुल बस के ड्राइवर दाऊद को बताया था, जो हमारा दोस्त था। उसने मुझे बताया, मुझे उसने धोखा दिया। मैं नहीं समझ पाया, अब मुझे बहुत पछतावा है।
जब वो होश में आ गई तो तुम वापस क्यों नहीं गए?
उनके जाल में फंस गया था।
वो कौन लोग हैं?
थोड़ा आ गया, ज़रा और आ गया। अगर मैं तुमको सब कुछ बता दूं, तो क्या तुम मुझे महीन की कब्र पर ले जाओगे?
बिल्कुल,
वादा करते हो?
हाँ, वादा करता हूं। बताओ, वो लोग कौन थे?
वो चंद अफराद हैं, मगर कभी नजर नहीं आते।
क्या तुमको उन्होंने काम पे रखा था?
काम पे नहीं, मुझे हायर किया था।
कितने पर तुमको हायर किया था? 100 तुम उससे मिले?
मैं खुद भी नहीं समझ पाया। एक अर्थ से मेरी निगरानी कर रहे थे। समझ गए कि बहुत सी मुश्किलात में हूँ। मुझसे दोस्ती कर ली, मेरी मुश्किलात हल करने की फिक्र में लग गए।
जिस शख्स को तुम गोली मारने जा रहे थे, उसके बारे में क्या जानते हो?
Thank you.
Отпусти ее, Шулим. Посади на стул.
Отпусти ее, посади на стул. Иди, помоги ему.
Нина Крушенко. Так как я пришла сюда, мы можем поговорить как друзья.
Что вы сделали с Нуфамом?
Ничего.
Нуфам жив.
Да. В доме?
В каком доме?
Так не пойдет. Я же не могу всю информацию сразу тебе дать.
Обманываешь.
Почему я должна обманывать уборщицу?
Если Нуфам жив. Почему твои люди пытают меня? Почему вы хотите знать, кто тот иранец, который имел дело с Аврамом и Нуфамом? Почему хотите знать, чем он занимается?
Так ты встретилась с этим иранцем?
Ты не ответила на мой вопрос. Если Нуфам жив, почему не спрашивают у него?
А мы спрашивали. Не отвечают. Но ты можешь помочь ему.
Как?
Расскажи нам все, что знаешь. Если скажешь, я отвезу тебя к Нуфаму, чтобы вы поженились, и сделаю все, чтобы отправить вас в Израиль.
Нуфам не хочет жить в Израиле.
А ты хочешь?
Куда бы Нуфам ни поехал, я поеду с ним.
Нина, ты точно услышала название страны? Иран?
Да, слышала.
Так наверняка уже знаешь, что их правительство и народ ненавидят нас. Они не хотят видеть нас в живых. Что же говорил этот иранец?
Я ни с каким иранцем не говорила. Я с Нуфамом говорила. Он другое рассказывал.
О чем он говорил?
Почему некоторых иранцев мы называем выселенными? Почему делаем из них убийц? Зачем убиваем людей, которые нам не враги? Чего хотим добиться, убивая людей?
Шулин, войди в кафе. Скажи Кларе, Адемуфа ждет ее в машине. Я хочу поговорить с ней о спасении ее мужа. Сам же оставайся там. Пей свое пиво до тех пор, пока она не вернется.
Хорошо, как скажешь.
Благодарна вам, что вы думаете о моей жизни и жизни моего мужа.
Все беженцы и евреи должны держаться вместе, Клара, чтобы не смогли разделить нас.
Да. Да только Авраам этого не понял. После нашим с вами разговора я больше не разговариваю с ним. И если он будет продолжать вести себя как сумасшедший, я разведусь.
Ну, в офисе ты мне сказала, что еще любишь его.
Да. Так и есть. Люблю.
Как же разведешься, если любишь?
От любви до ненависти один шаг. Если любимый человек совершает много ошибок.
Да. Моя проблема, что я никогда в жизни не влюблялась.
Никогда?
Никогда. Я была моложе тебя. Когда отец заставил меня выйти замуж за своего партийного друга. Он был старше меня. Когда они убили одного из своих сообщников из-за их каких-то партийных дел, я развелась с ним и вступила противостоящую партию. Вышла замуж за человека, который ненавидел коммунистов из-за их каких-то партийных дел. Я развелась с ним и вступила в противостоящую партию. Вышла замуж за человека, который ненавидел коммунистов. Хотела таким образом отомстить отцу. Этот брак долго не продержался. Я переехала в Израиль. Снова без любви вышла замуж. За одного олигарха. Хотела занять важный пост. И заняла. Ну и этот брак не продлился и год. Но с того момента я стала важным человеком. Человеком, который никогда больше не влюблялся. Однако ж, когда мне было 18, я хотела влюбиться. Хотела выйти замуж за балерона. Была без ума от балета. Когда мне было 18, я хотела влюбиться. Хотела выйти замуж за балерона. Была без ума от балета. Отец не позволил. Клара, Клара. После стольких лет ты мне напомнила старые времена, Клара.
Я очень рада, что мы познакомились.
Я тоже. Клара. Твой отец получил инфаркт из-за распада Советского Союза.
Да.
А отец Авраама, Сергей, по той же причине совершил самоубийство.
Да.
Значит, я правильно угадал.
Что? Что вы угадали?
Наше расследование выяснило, что этот иранец, с кем общается твой муж, является членом тайной коммунистической организации. Эта организация в основном работает за границей. Но мы полагаем, что финансирование получает изнутри страны.
И чем занимается эта организация?
В основном ловят беженцев евреев, у которых были и есть коммунистические убеждения.
Да, но у Авраама не было никаких коммунистических увлечений.
Клара, Клара. Отец Рам, его имя, очень важное имя в коммунистической партии в Москве.
Какую выгоду они хотели извлечь от этих евреев?
Они хотят знать все и про всех.
Зачем?
Чтобы не разрешить вернуться им в Израиль. Но это еще не все, Клара. У этой организации
есть еще наемные убийцы. Эти убийцы должны найти всех евреев-патриотов, которые могут быть опасны, и убить их. Забудь о разводе, Клара. Сделай все, чтобы твой муж не вступил в эту организацию.
Я думаю, что он не вступил в эту организацию.
Так если уже вступил, ты должна узнать всех и сблизиться с ними, Клара. Найди для нас имя и данные этого иранца, Клара. Если снова договорятся о встрече, сообщи мне. Клара, разве не ты хотела, чтобы я помогла спасти жизнь твоего мужа? Тогда делай все, что я тебе сказала.
Делаю все так, как вы сказали.
Иди работай. Сообщение.
Какое сообщение?
Какая-то пословица персидская. В стене есть мышка. У мышки есть ушки. Морис. Морис.
Слышу. Держу телефон.
Мне кажется, она этим что-то хочет сказать.
Что? Среди нас есть шпион?
Սահակյանը չի եկել, որ գատեսնի էստեղ նստած ես, իզուր վեճ է լինելու։ Ժանը։
Позвонить, значит, помирились.
Не совсем. Но можем увидеться, пойти в ресторан, поговорить, покушать и окончательно помириться.
Не могу. Есть дела.
Почему?
Я уже обещал Нуфаму, должен зайти к нему.
А не можешь перенести это дело на завтра?
Ладно. Нет, не могу. Завтра позвоню тебе на работу, договоримся и встретимся.
Хорошо.
Ладно, пока. Համար կարող եմ պատվիրել։
Հանձնագիր եք ընտրեմ։
वो बड़ी मछली जो मैडम को बहुत पसंद थी हौज में नहीं है, कहाँ गई?
डरो मत, उसे कुछ नहीं हुआ है। दो दिन पहले खुद आई थी मछली।
तुमको क्यों नहीं लेगी?
तुम कभी सुधरोगे नहीं।
तुम कब तक घर के अंदर ये कंबल और रजाई ओढ़े पड़े रहोगे? जाकर हीटिंग सिस्टम को क्यों नहीं देखते, क्या खराबी है? जाके देखो, सड़क तो इससे ज्यादा गर्म है।
काम इतना ज्यादा था कि चेक नहीं कर पाया। अच्छा तुम बताओ क्या काम है?
मैं कसम खा सकता हूँ कि अगर तुम्हें काम ना होता तब भी चेक नहीं करते। ये तो बेगम की मेहनत है जो घर इस हालत में है, वरना अब तक इसकी छत गिर जाती।
तुम यहाँ मेरी मलामत करने आए हो या कोई जरूरी काम है तुम्हें?
एक जरूरी काम था जनाब।
तुम अब तक सोए नहीं? अब तक दफ्तर में क्यों रुके हो? कल सुबह उसको बता दूं?
आज ही।
उससे कहां ट्रांसफर किया गया? खुद तुम्हारा क्या ख्याल है? इतना अरसा गुजर जाने के बाद तो उनके दरमियान कोई राबिता नहीं होगा। अभी हमने कोई नतीजा नहीं निकाला। ठीक है, پوچھ گچھ میں فرشاد سنجلی سے معلوم ہوا کہ اسے غلط اطلاعات دی تھیں؟
اطلاعات غلط نہیں دی تھیں.
کیا مطلب؟
یعنی انہیں بخوبی پتا تھا کہ یہ شخص انتظامی شعبے میں کام کرتا ہے، کوئی خاص آدمی نہیں.
تو مجھے پوری بات بتاؤ، فرشاد سنجلی نے پوچھ گچھ میں تمہیں کیا بتایا، کیا کہا؟
انہوں نے کہا اگر محسن روان بخش کو قتل کر دو تو ایرانیوں پر بخلاٹ طاری ہو جائے گی. میں خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ کیوں. انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ بلٹ پروف گاڑی استعمال کرتا ہے، کئی باڈی گارڈ ساتھ ہوتے ہیں. یہ سب تو بتایا ہی نہیں تھا، کہا تھا کہ بالکل آسان سا ٹارگیٹ ہے، کوئی خاص آدمی نہیں ہے. کہا تھا کہ اگر اسے مار دو تو معمولی ملازمین بھی ڈر جائیں گے.
کس وجہ سے؟
میں بھی اسپتال سے اپنی بہن کے گھر تک اور بہن کے گھر سے یہاں تک یہی سوال خود سے پوچھ رہا ہوں. جس شخص کے پاس کوئی خاص عہدہ نہیں اسے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟
البتہ اسی واقعے کے نتیجے میں ادارے میں اس کی حیثیت بدل گئی ہے.
کیسے بدل گئی؟
ابھی چند گھنٹے قبل اسے اس کے پسندیدہ ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، جالہ مویت کے شعبے میں.
جالہ مویت
ایک پرانا عشق ہے، وہ عورت ہے جو برسوں پہلے اس سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں کی.
اچھا یہ بتاؤ، تم نے جالہ مویت کا ریکارڈ دیکھا ہے؟ خود اس سے ملے ہو؟
دو تین دفعہ.
کتنے سال کی ہے؟
40 سال کی، ابھی شادی نہیں کی.
روان بخش کی وجہ سے؟
شاید.
جالم مویت کسی اہم پوسٹ پر ہے؟
اہم بھی ہو سکتا ہے. تمام کارکنوں کے ریکارڈ تک رسائی ہے، سب کی ذمہ داریاں، سب کی آمدنی، ملک کے اندر اور باہر کے مشن، مختصر یہ ہر شخص کی تمام معلومات ہیں. چلو اٹھو چلتے ہیں. اٹھو آ دیکھتے ہیں. چلو دیکھیں یہ سب کہاں تھا. جاؤ جا کر وہاں بیٹھو. ارادہ یہ تھا کہ اس فائل کی نماز صبح کی اذان تک اسٹڈی کر لوں، ابھی چند صفحات ہی پڑے تھے، آنکھ میں درد ہونے لگا. لیکن تم صبح تک یہ فائل پڑھ سکتے ہو اور تمہاری آنکھ میں درد بھی نہیں ہوگا.
تم کیا تلاش کر رہے تھے؟
تمہارے آنے سے قبل تک تو مجھے پتا نہیں تھا.
اب جب سمجھ گیا ہو تو اب میں کیا تلاش کروں؟
فرشاد سنجری کے اعترافات کو مکمل کرنے والے نکات.
تو کیا تم نہیں لوگے؟
نہیں، میں گھنٹہ سونا چاہتا ہوں.
ٹھیک، جاؤ سو جاؤ.
اگر کسی نتیجے پر پہنچے تو مجھے جگا دینا. किसी नतीजे पर पहुंचे?
कुछ अहम पॉइंट नजर आए हैं।
कौन से अहम पॉइंट हैं?
उसने बैरूनी मुल्क कुछ सफर किए हैं जिनका उसकी नौकरी से कोई रब्त नहीं है, लेकिन सफर इदारे की तरफ से हुआ है, जैसे रोम का सफर, दुबई, ब्रसेल्स।
ब्रसेल्स में तो उसकी बहन रहती है।
बिल्कुल, वो दो तीन बार ब्रसेल्स गया है। एक सफर में ऑफिशियल टूर की आड़ में वो होटल में भी ठहरा, क्योंकि उसी वक्त उसकी बहन लंदन गई हुई थी।
ऑफिशियल टूर की आड़ में गया, क्या मतलब है?
मतलब ये है कि सफर के दौरान कामों की कोई रिपोर्ट उसकी फाइल में नजर नहीं आती।
शायद रिपोर्ट खुफिया रही हो।
ये कैसे मुमकिन है? दफ्तर का एक मुलाजिम जो कई नुमाइशों का मुंतजिम रह चुका हो, खुफिया मिशन पर जाएगा?
और क्या है?
एक चार्ट है उसकी आमदनी और जिंदगी के अखराजात, अंदरून और बैरून मुल्क सफर पर आने वाले खर्चे का। वो नजर आए इन चीजों का आपस में कोई रब नजर नहीं।
अगर हमारे और तुम्हारे खुसर के पास भी गाड़ियों के शोरूम होते तो हमारे आमदनी और खर्चात का चार्ट भी ऐसा ही होता।
इत्तेफाक की बात यह है कि खुसर ने गाड़ी की पूरी कीमत उससे वसूली।
किस गाड़ी की कीमत?
वही जो उसकी बीवी चलाती,
यानी उसकी बेटी।
और क्या? मेरे जहन में एक आइडिया है, कल से उसकी निगरानी शुरू कर देते हैं।
इसके लिए मुनासिब वजह और सबूत नहीं है।
इन तमाम चीजों की बुनियाद पर हकानी को तुम तैयार कर सकते हो कि रवान बख्श पर एक महीना नजर रखी जाए।
सिर्फ अंदाजे और गुमान पर आर्डर नहीं देते
भाई। अगर यकीन होता तब तो हम फौरन उसकी गिरफ्तारी को वारंट ले लेते।
तुमको यकीन है कि रवान बख्श फॉरन से राबते में है?
नहीं, यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे इत्मीनान है कि अगर राबता है तो इसी एक महीने में हमें मालूम हो जाए।